मन का हर कण कहता है,
हम बच्चों का मन कहता है,
या तुम्हारी याद।
ओम शांति। 18 जनवरी विशेष स्मृति दिवस पर आप सभी बाबा के इस बेहद घर में पधारे हैं। जनवरी मास, उसमें भी विशेष अव्यक्त दिवस, हम सभी कल बाबा के साथ साथ मनाएंगे। बाबा ने 33 वर्षों के अपने पुरुषार्थ के काल में संपन्नता को प्राप्त किया। क्या बाबा ने ऐसा पुरुषार्थ किया जो नर श्री नारायण की पदवी प्राप्त कर ली। हम सभी साकार से तो सन्मुख में नहीं मिल सके हैं, लेकिन 41 वर्षों से अव्यक्त पालना का अनुभव साकार रूप में ही कर रहे हैं। इतने स्नेह की पालना लौकिक में भी माता पिता अपने बच्चों को नहीं दे सकते, जैसा कि हम सभी बाबा की पालना में पल रहे हैं। मुझे भी मधुबन में रहते करीब 40 साल होने वाले हैं, और उस 40 सालों में बाबा का अव्यक्त पाठ जितना समय चला है, ड्रामा की नूंद ही कहें कि बाबा का हर महावाक्य इन हाथों से लिखने का सौभाग्य मिला, और बाबा की एक एक पालना की अनोखी विधि अव्यक्त रूप में साकार की अनुभूति मैंने अनेकों बार की है, क्योंकि माध्यम दादी का और पार्ट बाप और दादा का। एक वंडरफुल पार्ट 41 वर्षों से मैं देखता रहा हूं, कैसे स्नेह की पालना एक एक बच्चे को शिक्षाओं से सजाना, उमंग उत्साह भरना, और विशेष हर एक ब्राह्मण बच्चा अपनी संपन्नता को प्राप्त करे, संपूर्णता को प्राप्त कर ले, उसके लिए वरदान, दुआएं, शिक्षाएं, स्नेह की दृष्टि और हाथों से टोली देकर बहुत प्यार की पालना अव्यक्त रूप में बाबा ने हम सब बच्चों की है। साकार स्वरूप में बाबा की पालना का सबूत पाने वाली दादियां, बड़े भाई और बहनें, वो तो अपने अनुभव सुनाते ही हैं बाबा की क्या क्या विशेषताएं थी, बाबा का चलना, बाबा का उठना बैठना, बच्चों से मिलना, अनेक अनुभव हम सभी साकार के पालना लिए हुए भाई बहनों से सुनते हैं। लेकिन साकार ने जिनको आप समान बनाया, वो हम सब के सामने एक आदर्श मूर्तियां दादियां हैं, जिनको आज तक हम सभी देखते हैं और उनकी पालना का अनुभव करते हैं। हमसे साकार के अनुभव के बारे में कई लोग पूछते हैं, क्योंकि मेरा बचपन साकार के समय ही बीता, करीब 13 वर्ष तक बाबा के पत्रों से मेरी पालना हुई साकार में, और पत्रों में हर बार बाबा का हर हफ्ते याद प्यार मिलता था, क्योंकि लौकिक में परिवार वाले पिताजी माताजी सभी ज्ञान में थे और हर वर्ष मिलने भी आते थे, और नियम था कि बाबा को हर सप्ताह पत्र लिखना है, और जितने भी पत्र मधुबन में आते थे बाबा अपने हस्तों से लाल लाल अक्षर से सभी बच्चों को उत्तर देते थे, और उन उत्तरों को उन पत्रों को पढ़ा मैंने जरूर, लेकिन साकार के सन्मुख मुझे आने का सौभाग्य नहीं मिला। अव्यक्त होने के बाद जब मैं आया तो बाबा के बहुत समीप सानिध्य में बैठने का उठने का बहुत सुंदर पार्ट, बाबा गद्दी पर आते थे अपने कमरे में, जिन्होंने बाबा का कमरा पांडव भवन में देखा है वहां तो उठाओ काफी हैं, अच्छा सभी बैठे हैं ऐसे लगता है, जिन्होंने नहीं देखा है वो उठाओ, अच्छा बहुत कम है ऐसे। पांडव भवन में बाबा का कमरा, बाबा की चारपाई और बाबा जिस गद्दी पर बैठते थे साकार में उसी तरह से सजा हुआ है अभी तक। कमरा थोड़ा सा बड़ा किया गया है लेकिन स्थान वही है। तो बाबा गद्दी पर अव्यक्त होने के बाद दादी के तन में आते थे, और करीब एक एक बच्चे से मैं समझता हूँ आधा घंटा पौना घंटा तक मिलन होता था, क्योंकि बहुत थोड़े से बच्चे थे और बाबा का पार्ट एक न एक दूसरे दिन 70-71 में बाबा एक दिन छोड़ करके आते थे, कभी सुबह भी आते थे कभी शाम को आते थे, और हर प्रकार की स्थूल में जैसे साकार में बाबा डायरेक्शन देते हैं देते थे, ऐसे ही अव्यक्त रूप में भी हर बच्चे को मिलना, उसकी हालचाल पूछना, दिल लेना, फिर क्या करते हो, कैसे चलता है यज्ञ में, क्या बातें हैं, हर प्रकार की घरेलू बातें वरदान के साथ साथ दृष्टि के साथ साथ। कई बार हम लोग जाके बिस्तर पर सो जाते थे तो बाबा कहते थे जाओ बच्चों को जगा के ले आओ, तो रात को 12-1 बजे जो सो गए हों उनको उठा लिया जाता था, चलो बाबा बुला रहे हैं। फिर बाबा बहुत प्यार से अपने साथ ब्रह्मा भोजन खिलाते थे रात को ही। तो ये सब पार्ट तो साकार में अव्यक्त रूप में भी साकार के साथ के अनुभव किए हैं। बाबा की स्नेह की पालना का रिटर्न क्या, टॉपिक आज की ये है, साकार की पालना का रिटर्न नहीं लेकिन स्नेह की पालना जो हम सबको मिली है, बाबा ने इतने प्यार से पालना की है, और स्नेह का ही सबूत है जो आज 41 वर्ष हो गए लगातार अभी तक बच्चों को उसी रूप से पालना मिल रही है। तो इतनी पालना लेने वाली आत्माएं उसका रिटर्न क्या करें, क्योंकि रिटर्न तो बाबा कहता है देना पड़ेगा, और बिना रिटर्न दिए तुम्हारी रिटर्न जर्नी शुरू नहीं होगी। क्या रिटर्न बाबा हम सबसे चाहते हैं? तो बाबा की चाहना है कि मेरे बच्चे मेरे समान बन जाएं, बहुत ऊंचा लक्ष्य। बाबा ने कहा लक्ष्य बड़ा ऊंचा है लेकिन लक्ष्य के प्रमाण लक्षण कहाँ तक आए हैं वो तो हर एक खुद ही चेक करे। बाबा तो हम सबको बहुत ऊंचा अपने समान देखते हैं और बनाना चाहते हैं। बाबा ने क्या पुरुषार्थ किया, क्या मेहनत की, बाबा के मुरलियों में अव्यक्त पार्ट में भी साकार के समय के अनुभव कई बार हमने नोट किए हैं। साकार ने क्या क्या किया तो आप सबको मालूम होगा, बाबा की 1932 की डायरी, शिव बाबा की प्रवेशता के पहले 4 साल पहले 36 में बाबा आए। लेकिन बाबा साकार में जब बाबा ने 12 गुरु किए हुए थे उस समय की एक डायरी मिली बाबा के हस्तों से लिखी हुई, और शिव बाबा को आना था इसलिए बाबा से विशेष पुरुषार्थ ब्रह्मा बाबा से शिव बाबा ने करवाया। क्या पुरुषार्थ बाबा ने किया उस डायरी में बाबा ने लिखा है, एक एक कर्म इंद्री से, अपने मन से, बुद्धि से, संस्कारों से, आँखों से, कानों से, मुख से, जैसे कोई आत्मा बात करती है अलग हो करके, तो बाबा ने ऐसे ही बात किया, हे मेरा मन मंत्री, जब मैं गुरु के ध्यान में बैठता हूँ तो तुम क्यों भटकता है, क्यों इधर उधर भागता है, तुम मेरा कहना क्यों नहीं मानता है, तुझे क्या चाहिए, बुद्धि वजीर तुम ठीक ठीक समय पर निर्णय क्यों नहीं देती है, जो चाहिए वो क्यों नहीं करती है, अपनी सभी कर्मेंद्रियों पर, मन बुद्धि संस्कार और विशेष पांचों इंद्रियां जो आत्मा की मुख्य कर्मेंद्रियां ज्ञान इंद्रियां हैं, उन पर कंट्रोल किया, और ऐसा कंट्रोल किया जो भगवान भी उस रथ को अपना माध्यम बना करके इतने बच्चों की पालना करने के निमित्त बने। ब्रह्मा बाबा की एक एक कर्मिंद्री शीतल काया वाली एकदम, कहते थे बाबा के हाथ इतने कोमल जैसे कोई छोटे बच्चे के हों, इतना शरीर लाइट हो गया इस पुरुषार्थ से, क्योंकि वो कर्म इंद्रिय जीत बन गए। अभी भी हम बच्चों को बाबा यही कहते हैं, जितना समय मिलता है स्वराज्य अधिकारी बनकर अपनी कर्म इंद्रियों को आर्डर प्रमाण चलाओ, कभी भी ऐसा नहीं कहो कि मैं चाहता नहीं हूं लेकिन मुख से गलत निकल गया, कानों से गलत सुन लिया या हाथ से गलत हो गया। ये सब कर्म इंद्रियां आपके आर्डर प्रमाण काम करें, हम सभी बाबा के समान बनने वाले ब्राह्मण कुलभूषण बच्चे बाबा की आशाओं को तभी पूरा कर सकते हैं जब हम कर्म इंद्रिय जीत बने। कोई भी कर्म इंद्रिय मुझ आत्मा को धोखा न दे, इसके लिए फुल अथॉरिटी मालिक बन करके रहना, अपने भ्रकुटी आसन पर राजा बन करके बैठना और फिर अपनी दरबार लगाना, रोज कम से कम 5 बार ये दरबार लगा करके देखो कि मेरा मन मेरा कहना मानता है, मेरे कंट्रोल में है, जहां चाहूं वहां यात्रा कराता है, क्योंकि मन एक वाहन है, और मन के वाहन में जहां चाहे हम वहां जा सकते हैं। सेकंड की तीव्र गति जिस पर अगर आत्मा विराजमान होकर चाहे तो अभी अपने अव्यक्त वतन और मूल वतन की सैर कर सकती है, दुनिया के किसी भी कोने में 1 सेकंड से भी कम समय में पहुंच सकती है। उस संकल्प शक्ति पर मेरा कंट्रोल है, ये अभ्यास की जरूरत है, और बाबा ने इसी अभ्यास से स्वराज्य अधिकारी बन करके अपने आप पर राज्य किया और सभी बच्चों का दिल जीतकर सबका बाबा बन गया। हर एक के मुख से निकलता मेरा बाबा, चाहे वो पुरुषार्थ में किसी भी कारण से कमजोर भी हो, कुछ अवज्ञाएं भी हो रही हों, लेकिन बाबा के प्रति उसका स्नेह अटूट रहा, क्योंकि बाबा ने सबको माता पिता के रूप से बच्चे का प्यार दिया। ये मेरे बच्चे हैं, ये अबोध हैं, अनजान हैं, अगर कोई गलत भी है, गलत कर रहा है, तो भी उसको क्षमा कर दिया, उसकी बातों को दिल पर नहीं रखा। इसलिए हरेक के दिल से निकलता है मेरा बाबा। आज तक भी सभी अव्यक्त रूप में भी मेरा बाबा कहते हैं, और उसको दादी जी ने फॉलो करके ऐसा स्वरूप दिखाया जो दादी जी के लिए भी सब कहने लगे, मेरी दादी, मेरी दादी। हर एक को अपनेपन की फीलिंग वही दे सकता है जो किसी की कमी कमजोरियों को दिल पर नहीं रखता। बहुत बेहद की विशाल दिल, बड़ी दिल परिवार है, और परिवार में सब समान नहीं होंगे, इसलिए अपेक्षाएं न रख करके शिक्षाएं दी और उन्हें अपने समान बनने के लिए प्रोत्साहित किया, लक्ष्य दिया, बच्चे बाबा के कदम पर कदम रख करके चलो। जो कुछ बाबा ने किया, कोई दूसरा स्टेप लेने की तुम्हें जरूरत नहीं है। ब्रह्मा बाबा ने सब कुछ करके दिखाया है। प्रवृत्ति में रहा, घर ग्रस्त में रहा, बाल बच्चों को संभाला, सब कुछ करते हुए भी इतना ऊंचे से ऊंचा पार्ट प्ले करते हुए आदि देव आदि पिता इस सृष्टि की नंबर वन आत्मा कभी भी बोल में अहम नहीं दिखाई दिया। मैं हूं कुछ अपनी हस्ती को गला दिया, इतना निरहंकारी, इतना निर्माणचित, जो हम सभी बाबा की मुरलियों में सुनते हैं, पढ़ते हैं। बाबा कहता है, बच्चे मैं कुछ नहीं करता, मैं नहीं पढ़ाता, मैं नहीं सुनाता, ये तो शिव बाबा सुनाता है, तुम उसे याद करो, इस देहधारी को याद नहीं करना। इतना निरहंकारी, इतना नम्रचित, इतना निर्माणचित, जो मैं और मेरे की हदें समाप्त कर दी। हम सभी समान बनने वाले बाबा के बच्चों को ये स्नेहकारी टर्न देना है। कितना भी यज्ञ के प्रति हम सभी करें, तन से मन से धन भी संपूर्ण लगा दें, लेकिन कभी मैं पर न आए, इस बात पर ध्यान रखना। नहीं तो एक तरफ हम पुण्य की बहुत सुंदर पूंजी जमा करते हैं, पुण्य का स्टॉक जमा करते हैं, दुआओं का स्टॉक जमा करते हैं, लेकिन अगर उसके साथ साथ मैं पना गया, मेरा पना गया, तो जैसे स्टॉक के अंदर कीड़े लग जाते हैं, घुन लग जाते हैं, और अंदर अंदर उसको खोखला कर देते हैं, ऐसे ही हम सभी आत्माएं बाबा के ऊपर संपूर्ण समर्पण हो करके, जैसे ब्रह्मा बाबा समर्पित हुए, हम फॉलो करने वाली आत्माएं भी प्रयास करती हैं कि हम भी बाबा के समान समर्पित हो जाएं। बाबा ने कोई की परवाह नहीं की, शिव बाबा मिला, निश्चय हुआ, संपूर्ण बलिहार हो गया, किसी को नहीं देखा, परिवार को नहीं देखा, समाज को नहीं देखा, शिव भगवान मिल गया है, बस मुझे पाना था, सो पा लिया, सब कुछ स्वाहा कर दिया, समर्पित कर दिया, कन्या माताओं का ट्रस्ट बना करके, पांच कन्याओं का ग्रुप बना करके ओम मंडली के नाम से अपनी सारी संपत्ति स्वाहा कर दी, और उसके बाद पैसे को हाथ भी नहीं लगाया, कभी भी नहीं कहा कि मैं बच्चों की पालना करता हूं, मेरी कमाई से इनकी पालना हो रही है, कभी बाबा के मुख से शब्द नहीं निकले, बाबा पालने वाला है, शिव बाबा की पालना में सब पढ़ रहे हैं, मैं भी उसकी पालना में पढ़ रहा हूँ। इतना समर्पित बुद्धि, अभी अपने आप से हम पूछें, ऐसा संसार में कोई व्यक्ति है जो सब कुछ करके अपने आप को इतना छिपा ले, कभी भी न कहे कि मैंने ऐसा किया। अब बाबा हम सबसे भी कहते हैं, उम्मीद रखते हैं, आशाएं हैं कि मेरे बच्चे, तुम स्वर्ग की नई दुनिया बनाने के लिए मेरे साथ मददगार हो, लेकिन मदद करते हुए कभी करने का भान ये ना आ जाए कि मैं करता हूं। बाबा अपने को ऐसा छिपा के रखा, कर्तापन के भान से मुक्त हो गया, अकर्ता बन गया, जिसे मैं कुछ करता ही नहीं हूं। आप सोच सकते हैं कि ऐसी ऊंची पदवी बिना कर्म के नहीं बनती। नर श्री नारायण की पदवी प्राप्त कर लेना साधारण बात नहीं है, लेकिन करते हुए भी अकर्तापन की स्थिति, निरहंकारी नम्रचित की स्थिति, इसलिए बोल में अथॉरिटी थी, अथॉरिटी अंदर की महसूस कराता था बाबा, लेकिन सत्यता की अथॉरिटी होते हुए भी सभ्यता बोल और व्यवहार में रही। हर बच्चे को संपूर्ण रिगार्ड दिया, सम्मान दिया, अपने से आगे रखा, पहले बच्चे, पहले मैं कभी नहीं कहा। हम सबको भी बाबा ऐसा ही निरहंकारी स्वरूप में अपने समान देखना चाहता है। बच्चे मेरे ऐसे बनो। हम सभी नंबरवार पुरुषार्थ तो कर रहे हैं, लेकिन बाबा हम सबको नंबर वन देखना चाहता है। बाबा ने अपने इंद्रियों को इतना शीतल बनाया, जो बाबा का एक लास्ट बोल हम सबने सुना है, निराकारी निर्विकारी निरहंकारी, इन तीनों बोल के अंदर सारा ज्ञान, सारी गीता का सार आ जाता है। ऐसी निराकारी स्थिति जैसे शिव बाबा सदा ज्योति स्वरूप में है, भान में नहीं आता देह के, देह में प्रवेश करता है लेकिन न्यारा है, जब चाहे प्रवेश करे, जब चाहे अलग हो जाए। शिव बाबा को ब्रह्मा बाबा ने भी फॉलो किया, इसलिए 41 वर्षों से शिव बाबा जैसे ब्रह्मा बाबा भी दोनों आत्माएं प्रवेश करती हैं और अलग हो जाती हैं, सेकेंड में डिटैच हो जाती हैं। हम सब बच्चों को भी यही ड्रिल बाबा करा रहे हैं। हर ब्राह्मण आत्माएं प्रवेश करने योग्य हैं, लेकिन डिटैच रहने का अभ्यास चाहिए, बार बार इस शरीर से अलग होने का अभ्यास चाहिए। ये वस्त्र हैं, मैं अलग हूं। जब हम ये अभ्यास कर लेते हैं, निराकारी स्थिति बहुत सहज बन जाती है, और उस निराकारी स्थिति से जब आत्मा इस शरीर में प्रवेश करती है, अपना कर्म करने के लिए कर्म कर लेती है, और कर्म करके फिर डिटैच हो जाती है। इसका मतलब ये नहीं है कोई शरीर से अलग हो जाती है, जैसे शिव बाबा आते हैं और चले जाते हैं, आत्मा तो शरीर में ही रहती है। शरीर से अलग हो जाए तो ये शरीर मिट्टी जड़ हो जाएगा, लेकिन भान जो है आत्मा, जो आज हम सबको पक्का हो गया है, देह भान, देह अभिमान आ गया है, ऐसा पक्का हो गया जो इसके लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है, फौरन कहीं कुछ हो जाए शरीर के अंदर, छोटी चींटी भी काट ले तो फौरन ध्यान चला जाता है, टेंशन चला जाता है, कोई नाम लेकर के भूल से दूर से पुकार दे तो ऐसे ध्यान चला जाता है, देह भान इतना पक्का है। और बाबा इस साल हम सबसे क्या चाहता है, इसी प्रकार ये देही अभिमानी स्थिति बन जाए, नेचुरल नेचर बन जाए। किया है अभ्यास सबने? 15 दिन हो गए बाबा की मुरली को, आज 17 दिन हो गए। 31 तारीख की मुरली में बाबा ने इस नए साल के लिए होमवर्क दिया कि बच्चे नेचुरल नेचर देही अभिमानी की बना लो। देह अभिमान जैसे नेचर बना हुआ है ऐसे नेचुरल बन जाए ये स्थिति निराकारी बना देगी तो शिव बाबा के समान आत्मा ज्योति स्वरूप स्थिति में रहे, निराकारी स्वरूप में रहे, निराकारी दुनिया की सैर करता रहे और ब्रह्मा बाबा के समान लाइट के शरीर में प्रवेश करे। ड्रेस को बदलना पड़ेगा और बाबा हम सबको यही अभ्यास बार बार करा रहे हैं, बच्चे ड्रेस को बदली करो, इस मिट्टी की ड्रेस को उतारो और अपने लाइट की ड्रेस को पहन लो, बार बार अभ्यास करो। लेकिन उस लाइट की ड्रेस को पहनने के लिए क्या करना पड़ेगा? बहुत लाइट रहना पड़ेगा, शुद्ध संकल्पों में रमण करना पड़ेगा। यदि मैं आत्मा सारा दिन अपने शुद्ध संकल्पों में रहती हूँ, हर नेगेटिव को भी पॉजिटिव में चेंज करती हूँ, व्यर्थ पर मेरा संपूर्ण नियंत्रण है और शुद्ध संकल्पों से भरपूर हूँ, तो ये लाइट का शरीर निर्माण हो जाता है। अशुद्ध संकल्पों से, नेगेटिव संकल्पों से लाइट का शरीर होता है लेकिन वो काली छाया होती है, सफेद नहीं, जो भटकती हुई आत्माओं के सामने साथ रहती है। हम सभी बहुत प्योर आत्माएं हैं, शुद्ध आत्माएं हैं, पवित्र आत्माएं हैं और शुद्ध संकल्प के कारण हम सब के साथ वो फरिश्ते की चमकीली ड्रेस है, लाइट की ड्रेस है और उस लाइट की ड्रेस से आत्मा चारों ओर सैर कर सकती है, अपने लाइट के वतन में लाइट के बाबा के साथ मिल सकती है, अनुभव कर सकती है अव्यक्त वतन का। तो मैं आप सबसे चाहूंगा कि कल का ऐसा दिन है, संख्या भले इतनी है, बाबा के कमरे में 3 मिनट बैठने का ही चांस मिलेगा, लेकिन सारा दिन हम लाइट की ड्रेस में तो रह सकते हैं। कोई भी एक व्यर्थ संकल्प, साधारण संकल्प, नेगेटिव संकल्प प्रवेश न करे। मैं इतने हल्के शुद्ध संकल्पों में रहूं, क्योंकि मौन तो रखना ही है सबको, लेकिन मुख के मौन के साथ साथ मन को भी विराम लग जाए, मन का भी चलना बंद हो जाए, ऐसी स्थिर और एकाग्र स्थिति जिसका अभ्यास ब्रह्मा बाबा ने करके अपनी संपन्नता को प्राप्त कर लिया। आप सबने अनुभव लास्ट के सुने होंगे बाबा के, कि बाबा के पास 1 साल से लेकर के अगर कोई बच्चे समाचार लेकर के आते, समाचार सुनाते, तो बाबा सुनते भी नहीं सुनता था और विस्तार की बजाय उसको 1 शब्द में जवाब दे देता था। सबके बीच में होते बाबा बच्चों के साथ रहते हुए बिल्कुल न्यारा और प्यारा बन गया, उपराम हो गया, साक्षी दृष्टा बन गया, समाचार भी सुने, डायरेक्शन भी दिए, पढ़ाया भी, पालना भी की, पत्र भी लिखे, सब कुछ किया, लेकिन कर्म करते हुए भी उपराम, साक्षी, न्यारा, विदेही, अपने पुरुषार्थ में लग गया। क्योंकि बाबा ने कुछ समय पहले एक संदेशी को वतन में भेजा, कहानी है ये भी, तो बाबा को संदेश भेजा वतन में ब्रह्मा बाबा ने कि तुम बाबा को ऊपर देखती हो तो देख करके आओ, उस बाबा में और इस बाबा में क्या अंतर है। तो जब संदेशी बाबा के पास गई कुछ मास पहले, तो कहने लगी, बाबा अभी वो बहुत व्हाइट है, बहुत सफेद सफेद दिखाई देता ऊपर वाला बाबा, और नीचे आपके अंदर थोड़ा सा अभी तक भी काला रूप है, कुछ कुछ ब्लैकनेस है, डार्कनेस है। अब बाबा ने संदेश पूछवा लिया चुपचाप और तपस्या में बैठ गया, लग गया, लगन लग गई कि मुझे उस बाबा जैसा बनना है। फिर थोड़े दिन के बाद बुलाया संदेशी को, कहा अब जाओ देख करके आओ, अब बाबा कैसा लगता है। तो जब वहां गई, ऊपर देखा बाबा को और नीचे देखा, तो कहती है तो दोनों समान हो गए बाबा। इतनी मेहनत करके, इतनी तपस्या करके, इतना उपराम रह करके, इतना साक्षी हो करके, सबके बीच में रहते, किसी को पता नहीं चलने दिया, बहुत गुप्त पुरुषार्थ करके बाबा अपने को उस फरिश्ते की ड्रेस में ले गया, अव्यक्त हो गया, इस चोले को छोड़ दिया। लेकिन पुरुषार्थ साकार में किया। हम सबसे भी बाबा ये चाहना रखता है, बार बार ये होमवर्क देता है कि बच्चे अपने उस अव्यक्त स्वरूप को देखो, उस लाइट की ड्रेस को देखो और उसमें और इसमें कितना अंतर है खुद ही जज करो। उस लाइट की ड्रेस में कोई भी नेगेटिविटी नहीं है, कोई भी व्यर्थ नहीं है, कोई दाग और धब्बा नहीं है, कोई विकारों की लेप छेप नहीं है, आकर्षण नहीं है, कोई खिंचाव नहीं है, बहुत शुद्ध पवित्र लाइट की काया है, हड्डी और मांस भी नहीं है। हम सब इस साकार शरीर में रहते हुए अभ्यास करके देखें कि मैं आत्मा ऐसी रह सकती हूं, बिल्कुल निर्दोष स्थिति में, सब कुछ करते हुए, सब कुछ देखते हुए, सब समाचार सुनते हुए, क्या मैं आत्मा उस प्योर वाइब्रेशन में रह सकती हूं। इसलिए बाबा हम सबको प्रैक्टिस करा रहा, बच्चे 12 बार फरिश्ता बनो, 12 बार निराकार बनो। समय की सीमा भी दी, लेकिन समय गिनती नहीं करते रहो, 5 मिनट करूं, 2 मिनट करूं, 3 मिनट करूं, कई बार समय ही देखते रहते हो, स्थिति नहीं बनती। जितना समय भी बनती है, 1 मिनट भी बनती है, 2 मिनट भी बनती है। बाबा तो कहता कम से कम एक बार 10 मिनट करो, लेकिन नहीं हो रहा है तो अब बहुत दिल से कष्ट होकर के इस अभ्यास को छोड़ मत दो। जब समय देखते हो है, बिस्तर पर जाते हो, सोते हो, उठते हो, भोजन करने जाते हो, स्नान करने जाते हो, बहुत समय ऐसा मिलता है अकेलेपन का, एकांत का, उसमें दिल करो, अभ्यास करो। अगर समान बनना है तो जरूर पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा, और स्नेह का यही रिटर्न है। क्योंकि बाबा बार बार कहता बच्चे जब लौकिक दुनिया में कोई का किसी से प्यार होता है तो मरने के लिए, कुर्बान होने के लिए तैयार हो जाता है, गला काटने के लिए भी तैयार हो जाता है। मैं तो बच्चों को कहता हूं बच्चे तुम्हें कोई इस स्नेह की कुर्बानी में गला काटने की जरूरत नहीं, लेकिन कम से कम इन विकारों का, इस रावण का गला तो काट दो। टर्न करो अपने को, यही रिटर्न है। हम सब बहुत समय से बॉडी कॉन्शियस में रहे हैं और देह अभिमान बार बार खींचता है, किसी को देखते हैं वृत्तियां चंचल हो जाती हैं, संकल्प विकल्प में बदल जाते हैं, साधारणता में आ जाते हैं, कोई हमारे मन इच्छित कर्म नहीं होता है, जो हमारी अपेक्षाएं रहती हैं उसके अनुकूल कोई कर्म नहीं होता है। उस समय हमारी स्थिति क्या होती है, जोश आता है, गुस्सा आता है। बाबा को देखो, अव्यक्त रूप को देखो, साकार को नहीं देखा कोई बात नहीं। बाबा अव्यक्त रूप में कितना प्यारा, कितना निर्माण होकर के बच्चों को शिक्षाएं देता है, बहुत प्यार से बच्चे बच्चे कह करके पढ़ाता है, सिखाता है, और 15 दिन के बाद अगर कोई बच्चा नहीं करता तो भी कहता बच्चे कोई बात नहीं, फिर से पुरुषार्थ करो। अपेक्षाएं बहुत हैं बाबा की, लेकिन अपेक्षा के रिटर्न में बाबा गुस्सा नहीं करता है। हम लौकिक में अपने परिवार के बीच में रहते हैं, अगर बच्चा कहना नहीं मानता तो, परिवार में कोई एक सदस्य कहना नहीं मानता तो क्या होता है, आग बबूले हो जाएंगे, गुस्सा आ जाएगा, मैंने इसको पलाया, इतना पढ़ाया, पालना दी, बड़ा किया, सिखाया, इसके पीछे इतनी मेहनत की, फिर भी ये कहना नहीं मानता, गुस्सा आ जाता है। और उसी समय अपशब्द निकल जाते, हाथ भी चल जाते, लेकिन बाबा हमारा कैसा निरहंकारी, कितना निर्माणचित, कितना क्षमा का सागर, दया का सागर, कृपालु, दयालु। शिव बाबा की जितनी विशेषताएं थी सब ब्रह्मा बाबा ने कॉपी कर ली। अब हम सबको कहता बच्चे तुम भी कॉपी करो, बस यही पुरुषार्थ करो, ऐसे बन जाओ, समान बन जाओगे। तो बाबा की एक एक विशेषता शिव बाबा ने कहा और ब्रह्मा बाबा ने किया। कभी भी मन मत नहीं चलाई और कभी अपनी मत को उसमें ऐड नहीं किया। हम कभी कभी बाबा की मुरलियां सुनकर के सोचते हैं ये तो हो ही नहीं सकता, कैसे होगा, ये तो असंभव सी बात है, या कह देंगे तो आठ लोग ही करेंगे, आठ ही तो पास होने वाले हैं, अपनी मत बाबा की श्रीमत के बीच में ऐड कर देंगे। लेकिन ब्रह्मा बाबा ने कभी भी श्रीमत जो मुरली है उसमें अपनी मत ऐड नहीं की। अपने अनुभव जरूर सुनाए हैं कि मैं ये करता हूं, मैं ये करता हूं, मैं ऐसे बाबा से बातें करता हूं, लेकिन बाबा की इतनी सारी श्रीमत शिक्षाओं के रूप में जो मिली है उसमें अपनी मत ऐड नहीं की और किसी की परमत का प्रभाव नहीं आने दिया। कई लोगों ने बाबा का विरोध जब हुआ तो यही कहा, दादा, बाबा को दादा कहते थे, सिंधी में बड़े भाई को दादा कहते हैं, कि दादा आप ये कहना बंद कर दो, आपकी संस्था बहुत आगे बढ़ जाएगी, बहुत सब अच्छाइयां हैं, लेकिन जो आप कहते हो ये काम महाशत्रु है, इसके कारण घर घर में झगड़े हो गए हैं, आप ये कहना बंद कर दो। बाबा ने कहा बच्चे मैं तो कहता ही नहीं हूं, मैंने तो कहा ही नहीं, मैं तो खुद ग्रस्त व्यवहार में रहा हूं, मेरे तो खुद बाल बच्चे थे, ये तो शिव बाबा कह रहा है, ये उसकी श्रीमत है और उसकी श्रीमत में मैं कैसे कह सकता हूं कि नहीं कहो, नहीं करो। इसलिए जो बच्चे पालन करेंगे वो ठीक है, नहीं करेंगे भले नहीं आवे सत्संग में, लेकिन शिव बाबा की इस मत में मैं अपनी मत ऐड करके कहूं बच्चे छूट है, मैं नहीं कह सकता हूं। बाबा ने श्रीमत में मन मत या परमत ऐड नहीं की। हम सबको भी कहता है बच्चे तुम्हारे लिए मुरली श्रीमत है, ये भगवान का फरमान है, ये आज्ञा है, और इस आज्ञा के हर कदम पर कदम रखो। पिछली मुरली में बाबा ने कहा शिव बाबा को हाथ नहीं है, शिव बाबा को हाथ नहीं है, लेकिन श्रीमत उनका हाथ है। अगर तुम श्रीमत पर चलते हो तो बाबा का हाथ तुम्हारे सिर पर है। हम सभी बाबा की मुरली को श्रीमत समझकर, किसी देहधारी की बात नहीं, बड़ी बहन जी ने मत दी है, दादी ने की है, फलाने ने दी, बाबा कहता कोई भी मनुष्य मत को श्रीमत नहीं कहा जाता, उसमें कुछ मिक्स हो सकता है, लेकिन श्रीमत माना बाबा की मुरली। और मुरली में जो महावाक्य आए हैं उसमें कभी भी क्वेश्चन करना ऐसा क्यों, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये तो बाबा के महावाक्य लगते ही नहीं है। हम सब बहुत गहराई से उसको सुने, समझें, उस पर विचार करें और उसमें हर कदम पर कदम रख करके नंबर वन ले सकते हैं। इसलिए श्रीमत हम सबका प्राण है और बाबा ने श्रीमत पर चल करके आज्ञा का पालन करके आज्ञाकारी सपूत बनने का सबूत दिया। अब हम सभी बच्चों को कहता बच्चे यही सबूत चाहिए, ऐसा सबूत दो, आज्ञाकारी हूं, वफादार हूं। वफादार माना एक बाबा दूसरा न कोई, कहीं पर भी आंख न जाए, तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से बात करूं, तेरे सिवाय मेरा और कोई नहीं। ऐसे पिताव्रता और पतिव्रता, एक बाबा के होकर रहने वाले वफादार कहलाते हैं। बाबा ऐसा रहा, हमेशा एक बल एक भरोसा, चाहे जितना विरोध हुआ, चाहे जितना अपमान हुआ। दादा ने कभी, बाबा ने कभी अपने जीवन काल में किसी के मुख से अपशब्द अपने प्रति सुने ही नहीं थे, और शिव बाबा की प्रवेशता के बाद कितनी गालियां संबंधियों ने दी, अपने लोगों ने दी, बाबा सब कुछ सुनते समाते निर्दोष हैं, इनका दोष नहीं है, ये पहचानते नहीं ये कौन करा रहा है, ये कौन कह रहा है, बाबा सहन करता गया। और आज गाली देने वाले जो उस समय सामने गाली देते थे, बाबा उस समय कहते थे बच्चे गिन गिन करके जितनी गालियां दे रहे उतने फूल चढ़ाएंगे, और आज हो रहा है वही सब फूल चढ़ा रहे हैं। विरोध किया, सामना करना पड़ा, सहन करना पड़ा, लेकिन बाबा ने सहन करके सबको बच्चे बच्चे कर करके माफ कर दिया। बच्चे इनकी गलती नहीं है, इनका दोष नहीं है, इसलिए जैसे बाबा ने किया है हम सब बाबा के समान बनने वाले बच्चे सिर्फ निराकारी स्थिति, निर्विकारी स्थिति, निरहंकारी स्थिति, आज्ञाकारी, वफादार, फरमानवरदार और ईमानदार बन करके रहे। जो हूं जैसा हूं बाबा तेरा हूं, ये दिल की आनेस्टी है, अंदर एक और बाहर दूसरा, उसको आनेस्ट नहीं कहा जाता। इसलिए अंदर और बाहर अगर हमारे अंदर समानता आ गई, हमारा ऐसा तीव्र पुरुषार्थ हुआ, तो बाबा कहेगा इसका लक्ष्य और लक्षण समान है, अलग नहीं है। अब समय है, हम सभी अंतिम समय में, बाबा हमेशा सावधानी दे रहे हैं, बच्चे अचानक कुछ भी हो सकता है, समय बहुत नाजुक आ रहा है, परिस्थितियां बहुत नाजुक हैं, अंतिम काल का समय चल रहा है, इसलिए जो सांसें बची हैं, जो समय है हम सबके पास, हम बाबा की इस पालना का रिटर्न करें। एक रस स्थिति द्वारा, अचल अडोल स्थिति द्वारा, निर्विघ्न स्थिति द्वारा, एक रस स्थिति, मिलनसार स्थिति द्वारा, सबसे एक होकर के रहें, तेरा और मेरा, तेरी एरिया मेरी एरिया, तेरी हदें मेरी हदें। बाबा कहता बच्चे इन हदों में मत फंसो, ये हदें तुम्हें बेहद में नहीं जाने देंगी, इसलिए इच्छा मात्रम अविद्या स्थिति में रहो। तो हम अगर बाबा की इन आशाओं को पूर्ण करेंगे, जैसा बाबा चाह रहा है वैसा हम करके दिखाएंगे, एक मत होकर के चलेंगे, एक होकर के रहेंगे, संगठन को मजबूत बनाएंगे, बाबा के समान तीव्र पुरुषार्थ करके निराकारी और अव्यक्त स्थिति में रहेंगे, कर्मेंद्रिय जीत बन जाएंगे, तो मैं समझता हूँ बाबा हम सबसे इतना प्रसन्न होगा कि बच्चे बाप की आशाओं के दीपक हैं, बाबा जो चाहता है वो करके दिखाने वाले हैं। और बाबा कहता बच्चे प्रत्यक्षता का पर्दा तो मैं आज ही खोल सकता हूँ, रुका हुआ इसीलिए है तुम बच्चे अभी तक तैयार नहीं हो। अगर तुम मेरे समान बन जाओ तो एक एक की सूरत से बाबा दिखाई देने लगेगा, ये चेहरा आपका दर्पण बन जाएगा, लगेगा इनको पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है। बाबा अभी उस स्वरूप में हम सबको स्थित कराना चाहते हैं। तो हम सभी अव्यक्त मास के अव्यक्त दिवस पर संपूर्ण आत्मा और परमात्मा दोनों से मिलन मनाएंगे। कल के दिन मैं समझता हूँ ऐसा वरदान, ऐसा भाग्य हम सभी बाबा से कल प्राप्त करें, अंतर्मुखी बनकर, अंतर्मुक्ता की गुफा में रहकर, बाबा के सिवाय कुछ भी देखे नहीं, बस नैनों में बाबा, दिल में बाबा, बाबा 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 की धुन लग जाए, तो बाबा ये वरदान मुझे दे दे कि मैं बाबा के समान बन जाऊं। और जो मेरी कमियां, कमजोरियां, संस्कार, स्वभाव, तेरा मेरा, बहुत सारे हिसाब किताब, बहुत सारी दुनिया की प्रॉब्लम्स, कईयों के पास प्रॉब्लम्स की लिस्ट है लंबी, बाबा कहता बच्चे वो सब प्रॉब्लम्स मेरे आगे रख दो, हल्के हो जाओ और मेरे से शक्ति ले लो समान बनने की। तो कल का ऐसा शुभ दिन है, वैसे तो लोग शोक मनाते हैं और हम लोग कहते हैं नहीं, शोक का दिन नहीं है, हमारा बाबा अपने तीव्र पुरुषार्थ से संपन्न और संपूर्ण बना, अव्यक्त बन गया, व्यक्त से हम सब बच्चे भी बाबा को फॉलो करके उन जैसे बन करके दिखाएं, उनके कदम पर कदम रखें, तो हमारे द्वारा जब बाबा दिखाई देगा, हमारे चलन से, हमारी दृष्टि से, हमारे व्यवहार से, हमारे कर्म से, तो सब बाबा बाबा देखेंगे और बाबा को पहचान करके अपने घर जाएंगे। इसलिए भक्ति काल के अंदर कहेंगे, जिधर देखो उधर तू ही तू है, तू ही तू है। ऐसे थोड़ी भक्ति में कहेंगे। तो हम सभी संगम के इन अंतिम घड़ियों में बाबा के समान बनने का लक्ष्य रख करके बाबा की स्नेह का रिटर्न करें। ओम शांति।